So tonight we'll follow more or less the same procedure as we did last night.
तो कल रात को हमने जो किया वही आज भी हम करेंगे बोधि वृक्ष के नीचे.
As you're going round the Bodhi tree, of course you're seeing all those places where the Buddha spent some time.
तो जैसे हम यह चंक्रमण करेंगे तो इस परिक्रमा के दौरान हम उन सभी स्थलों को छूते हैं या देखते हैं.
And of course you'll notice the Ajapala Nigrodha.
और आप निश्चित ही अजपाल निग्रोध जो है उसे देखेंगे.
In a way, after the Bodhi tree, that's the most important place in the site, according to me.
मुझे ऐसे लगता है कि उस समूचे परिसर में बोधि वृक्ष के पश्चात अगर सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई स्थल है तो वह अजपाल निग्रोध वृक्ष है.
And today we're going to learn a little bit more about why it's so important.
आज हम और थोड़ा उसके बारे में बात करेंगे क्यों यह इतना महत्वपूर्ण है.
Of course we started on the first day recognizing the absence of the Buddha.
तो हमने पहले दिन शुरुआत की बुद्ध के अनुपस्थिति के साथ.
I asked you to just reflect on the fact that the Buddha was not present.
मैंने आप लोगों से यह अनुरोध किया कि बुद्ध वहां मौजूद नहीं है इस बात का आप चिंतन कीजिए.
He's literally not present.
वो यानी क्या कहते हैं उसे वास्तविक रूप से वहां मौजूद नहीं है.
But he's also not present in our minds.
He's not present in our mind too.
He's not present in our minds as well, yeah.
तो इसका अर्थ यह भी है कि वो हमारे मन में भी मौजूद नहीं है.
Our minds are not the Buddha's mind.
हमारे जो मन है वह बुद्ध के मन नहीं है.
We need to recognize that to begin with.
तो हमें यह पहचानना होगा शुरुआत करने से पहले.
Then the second day we looked at in a way why he's not present.
और दूसरे दिन हमने यह देखा कि क्यों बुद्ध मौजूद नहीं है.
He's not present because we live in the house of self.
वह इसलिए मौजूद नहीं है क्योंकि हम स्व के गृह में रहते हैं.
In the house of pain.
जो पीड़ा है दुख है उस दुख के घर में हम रहते हैं.
And we saw the Buddha disappear from that house.
और हमने देखा कि बुद्ध उस घर से दूर चले जाते हैं.
That's what happened under the Bodhi tree.
यही हुआ बोधि वृक्ष के तले.
He saw the house builder.
उन्होंने गृहकार को देखा.
And he destroyed the house.
और उन्होंने उस गृह को नष्ट किया.
So we saw him, so to speak, in the act of disappearing.
तो हमने उन्हें देखा उस कृति में जब वे अदृश्य हुए.
Then yesterday we began to understand a little bit more about what had happened to him.
और कल हमने इसको जानने की कोशिश की कि क्या उनके साथ हुआ.
Yes, he destroyed self.
निश्चित ही उन्होंने स्व को नष्ट किया.
His whole mind and body no longer was centered on I.
और उनका मन और शरीर जो है वह स्व केंद्रित नहीं था.
But his human, his humanity was at the service of the Dhamma.
लेकिन उनकी जो इंसानियत थी वह धम्म की सेवा में ही थी.
He put his whole being at the service of the Dhamma.
उन्होंने अपने समूचे अस्तित्व को धम्म के सेवा में रखा.
You could even say he became the Dhamma.
ऐसा आप कह सकते हैं कि वे स्वयं ही धम्म बन गए.
The Dhamma lived through him.
धम्म जो था वह उनके द्वारा जीवित रहा.
That's why the Buddha says, if you see me, you see the Dhamma.
इसलिए बुद्ध कहते हैं अगर आप मुझे देखते हैं तो आप धम्म को देखते हैं.
If you see the Dhamma, you see me.
और अगर आप धम्म को देखते हैं तो फिर आप मुझे देखते हैं.
But we saw in the midst of that something about the Buddha's relationship to the world.
लेकिन इसके दौरान हमने यह भी देखा कि बुद्ध का विश्व के साथ संबंध क्या है.
We saw that he recognized there was nobody who equaled him.
हमने इस बात को पहचाना कि वहां ऐसा कोई भी सजीव या व्यक्ति नहीं था जो उनके बराबरी का हो.
That there was nobody who equaled him in terms of shila, samadhi, pragna and so forth.
शील समाधि प्रज्ञा के आधार पर उनके बराबर कोई नहीं था.
He recognized with humility that he was supreme.
उन्होंने नम्रता से यह स्वीकारा कि वही यानी पुरुषोत्तम थे.
So he's sitting under the Ajapala Nigrodha tree, and that realization has come to him.
और वे अजपाल निग्रोध वृक्ष के तले बैठे थे और यह साक्षात्कार उन्हें हुआ.
And he's put his humanity at the service of the Dhamma.
और उन्होंने अपनी जो इंसानियत है वह धम्म के लिए अर्पित कर दी.
So he's just sitting there.
वे केवल वहां बैठे थे.
And then he has a meeting.
और उनके पश्चात उसके पश्चात उनकी भेंट हुई.
Somebody comes through the jungle and finds the Buddha sitting there.
कोई तो भी जंगल में आया और उन्होंने बुद्ध को वहां विराजमान देखा.
It's thick jungle, but somebody was wandering through the jungle.
बहुत ही घना जंगल था उस वक्त, लेकिन कोई तो भी प्रवासी या जो जा रहा था यात्री वो वहां से गुजरा.
You know, the Buddha has been alone for many days.
अब आप जानते हैं कि बुद्ध काफी सप्ताह तक अकेले रहे.
Maybe even for some weeks.
काफी सप्ताह तक वे अकेले रहे.
Since Sujata gave him the milk rice, he's been on his own.
जब से सुजाता ने उन्हें खीर दी थी उसके बाद वे अकेले ही थे.
He's been sitting under the Bodhi tree, enjoying the bliss of release.
वे बोधि वृक्ष के तले बैठे थे और जो परम आनंद जो है विमुक्ति का उसका वो अनुभव ले रहे थे.
Then sitting under other trees,
और फिर अन्य वृक्षों के तले वे बैठे.
Gradually working things out,
और धीरे धीरे चीजें जो है वह कार्यरत हुई, काम करने लगी.
Gradually making sense of what's happened to him, if we can put it like that.
और धीरे धीरे उसका एक भाव आने लगा जो कुछ भी उन्होंने साक्षात्कार किया उसके प्रति.
But so far he's just been alone.
लेकिन तब तक वे अकेले ही थे.
They say, some traditions say, for 5 weeks he's been alone.
कुछ परंपराएं ऐसी बताती है कि 5 सप्ताह तक वे अकेले थे.
So he's sitting under the tree.
तो वे वृक्ष के तले बैठे थे.
And a Brahmin comes by.
और वहां पे एक ब्राह्मण आया.
And his name is Huhunkajati.
और उसका नाम था Huhunkajati.
Now the name gives it away.
अब जो नाम है वही कुछ सूचक है.
Some people say that Huhun is the sort of sound that an arrogant person makes.
तो ऐसा मानते हैं कुछ लोग, जब हम जवाब देते हैं तो हुँ ऐसे कहते हैं. यह थोड़ा सा उद्धट उत्तर होता है.
So you're a junior order member. Huh?
तो आप अगर नए धर्मचारी था उनको आप ऐसे कहते हैं.
Not so new, but junior. To me. So it's that sort of person.
तो उस तरीके का वह व्यक्ति था.
He's the sort of person who goes around saying, huh?
तो वो इस तरीके का व्यक्ति था जो इर्द गिर्द जाता था और ऐसे कहता था.
And well, he's a Brahmin.
और वो ब्राह्मण था.
It's very interesting, at that time this area was not fully Brahminized.
यह भी रोचक बात है कि यह जो प्रदेश था उस प्राचीन काल में यह पूरी तरह ब्राह्मणवाद में परिवर्तित नहीं हुआ था.
The Chaturvarna had not been fully established here.
जो चतुर्वर्ण था वह चतुर्वर्ण पूरी तरह प्रस्थापित नहीं हुआ था.
It was well established in the Kurukshetra.
तो जो कुरुक्षेत्र था उस कुरुक्षेत्र में यह पूरी तरह फैल चुका था.
But it was beginning to be established in this area.
लेकिन यह जो प्रदेश था इस प्रदेश में यह इसकी यानी बीज है पनप रहा था.
And scholars say that in the Pali Canon you can see a sort of struggle of the Brahmins to gain domination.
और विद्वान लोग ऐसे बताते हैं कि सूत्रों में ऐसा संघर्ष मिलता है कि कैसे ब्राह्मण लोग हावी होने की कोशिश कर रहे थे.
So, Huhunkajati sees the Buddha sitting there.
तो Huhunkajati ने बुद्ध को वहां बैठे हुए देखा.
The Buddha, of course, is sitting in meditation.
बुद्ध निश्चित ही ध्यान में बैठे हुए थे.
He's in a way occupying a spiritual position.
ऐसा मान लीजिए कि उनकी एक धार्मिक स्थिति नहीं, पोजीशन का मतलब
स्टेटस.
उनकी जो धार्मिक उपलब्धि जो थी उस उपलब्धि के साथ वो वहां बैठे थे.
एंड यू कैन इमेजिन दैट्स क्वाइट अ चैलेंज to Huhunka Jati.
तो आप यह समझ सकते हैं कि उस उपलब्धि के आगे हुहुंक जाति को यह एक आह्वान था.
There is the Buddha sitting there.
अब वहाँ बुद्ध बैठे हुए थे.
But he is the Brahmin.
लेकिन वो ब्राह्मण था.
He is the one who knows about spiritual life.
अब वह ऐसा मानता था अपने आप के बारे में कि मैं ही सब आध्यात्मिक जीवन के बारे में जानता हूँ.
So he's challenged by the Buddha sitting there.
तो जब बुद्ध वहाँ बैठे थे तो उनका बैठना ही उसके लिए एक चेतावनी हुआ.
So he goes up to him.
तो वो बुद्ध के पास जाता है.
And well, he greets him politely.
और नम्रता से उन्हें अभिवादन करता है.
The Buddha greets him.
और बुद्ध भी उसे अभिवादन करते हैं.
He sits down.
वो वहाँ बैठता है.
And they start a conversation.
और फिर उनका संवाद शुरू होता है.
And the conversation becomes a sort of challenge.
और वो संवाद धीरे धीरे चेतावनी में तब्दील होता है.
The Brahmin, Huhunka Jati, asks, what makes someone a Brahmin?
तो Huhunka Jati बुद्ध को पूछता है कि कौन सी चीज है जो ब्राह्मण बनाती है.
Now you can imagine that in Huhunka Jati's mind, the answer is already clear.
तो अब आप यह समझ सकते हैं कि Huhunka Jati के मन में इसका जो उत्तर था वह स्वाभाविक था.
And the answer would be, of course, somebody who can trace their Brahminical lineage back through 7 generations.
और यह स्वाभाविक है कि जो 7 पीढ़ियों तक अपनी विरासत ब्राह्मणों के कुल से देखता है वह ब्राह्मण होता है.
That's the conventional definition.
यही औपचारिक परिभाषा है.
Somebody who's been twice born.
जो द्विज दो बार जो जन्म लेता है वह.
Somebody who knows the Vedas.
जो वेदों को जानता है.
Somebody who's qualified to perform yajna.
जो यज्ञ को करने के लिए लायक होता है या काबिल होता है.
So that's in his mind.
वह उनका अपना जवाब मन में था.
That's what we're to assume.
तो यही ऐसा वह मानता था.
So this the first human being the Buddha meets is somebody from the hierarchical system of social order.
तो यह पहली भेंट किसी व्यक्ति की हुई बुद्ध की संबोधि के पश्चात जो उच्च नीचता के क्रम में थी.
So immediately we've got a question. How does the enlightened mind meet the social hierarchy?
तो यह तुरंत हमें सवाल आता है हमारे आगे कि कोई जो संबोधि प्राप्ति व्यक्ति है वह कैसे इस उच्च नीचता के भरे हुए समाज के व्यक्तियों को मिलेगा.
Is the Buddha going to accept that hierarchy?
क्या बुद्ध उस उच्च नीचता को स्वीकारेंगे?
Or is he going to challenge it?
या फिर वे उन्हें या उन्हें आह्वान देंगे?
That's what faces us right now.
Sorry?
That's what is happening right now.
हाँ, तो यह उस वक्त अभी हो रहा था.
There's a challenge between the social order, the hierarchical social order, and the enlightened mind.
तो यह आह्वान जो था यह असमानता से भरे हुए समाज को जो संबोधि प्राप्त मन है इनके बीच इसके बीच.
And of course, we know the Buddha's response.
और हम जानते हैं बुद्ध के प्रतिसाद को.
That the enlightened mind is revolutionary.
क्योंकि जो संबोधि प्राप्त मन होता है वह क्रांतिकारी होता है.
Bhante says that awareness is revolutionary.
Bhante भी ऐसा कहते हैं कि जो स्मृति है वह क्रांतिकारक है.
Well, the enlightened mind is awareness at its highest pitch.
और जो संबोधि प्राप्त मन होता है उसकी सजगता उच्च श्रेणी की होती है.
So of course it's revolutionary.
तो निश्चित ही यह क्रांतिकारी है.
So what the Buddha says is a direct confrontation to that sort of hierarchical system.
तो बुद्ध जो कहते हैं यह सीधा आह्वान है या आघात है उस असमानता से भरे हुए समाज के ऊपर या समाज के प्रति.
Of course we're talking in the Indian context, so it's the caste system that's the social hierarchy.
निश्चित रूप से हम भारत के परिपेक्ष में बात कर रहे हैं तो यह जाति मूलक असमानता थी.
But everywhere in the world there are social hierarchies.
लेकिन हर जगह दुनिया में ऐसी असमानताएं मौजूद है.
In England it's still dominated to some extent by class system.
अभी भी इंग्लैंड में जो वर्ग व्यवस्था है उस वर्ग व्यवस्था यानी इंग्लैंड में हावी है.
There's also a racial system.
वहाँ पे जो वंशवाद जो है वंश भेद भी हावी है.
In other countries, it's wealth that counts.
और अन्य देशों में जो है आपका धन गिना जाता है.
In Hungary, I've seen there's the white people and then there are the gypsies.
Hungary में मैंने देखा वहाँ पे श्वेत लोग हैं, सफेद लोग हैं और जिप्सी लोग हैं.
Everywhere there are these hierarchies.
हर जगह इस प्रकार की जो उच्च निचता या असमानता है.
Yes, caste is a particularly complex and deeply ingrained system.
निश्चित ही जाति जो है यानी जाति व्यवस्था यह बहुत ही क्लिष्ट और गहरी धसी हुई है.
But the Buddha isn't just challenging the caste system.
लेकिन बुद्ध केवल जाति व्यवस्था को ही आह्वान दे रहे थे ऐसा नहीं है.
He's rejecting all forms of hierarchy based on birth.
बुद्ध जन्म के आधार पर जितनी भी असमानताएं हैं उन सभी असमानताओं का निरोध या उन्हें नकार रहे थे.
In Baba Saheb's great phrase, he's claiming it's worth, not birth, that makes you a value.
बाबा साहब के शब्दों में अगर कहा जाए तो यह आपकी योग्यता है, आपका जन्म आपका मूल्यांकन नहीं करती है.
That's what the social hierarchy should be based upon.
और इसी के आधार पर जो सामाजिक असमानता या उच्च निचता निर्भर होती है.
We should honor people for their worth, their moral worth, their spiritual worth.
हमने लोगों का सम्मान या आदर करना चाहिए उनके मूल्यों के आधार पर.
So the Buddha issues this challenge by trying to give new meaning to the word Brahmin.
तो बुद्ध ने एक नया आवाहन वहाँ पे सादर किया ब्राह्मण को परिभाषित करने के लिए.
Later on, he calls even the senior bhikshus Brahmins.
उसके पश्चात कुछ जो वरिष्ठ भिक्षु थे उनको उन्होंने ब्राह्मण करके भी संबोधित किया है.
But he doesn't mean Brahmin in the old sense at all.
लेकिन वहाँ ब्राह्मण का जो अर्थ है वह पुराने रूढ़ी परंपरा के आधार पर जो है अर्थ था वह ऐसा नहीं था.
He's trying to give the word a new meaning.
उन्होंने शब्द को एक नया संदर्भ या अर्थ दिया.
So he said a Brahmin is somebody who's got rid of all evil states.
उन्होंने ऐसे कहा कि ब्राह्मण वह होता है जो सभी अकुशल अवस्थाओं से मुक्त होता है.
He's somebody who's not arrogant.
वह ऐसा होता है जो उद्धट नहीं होता है.
Somebody who doesn't say hoo hoo.
ब्राह्मण हूँ हूँ ऐसे नहीं कहता.
He's somebody who's pure in the moral sense.
वो शुद्ध होता है उसके नैतिक रूप में.
Not pure because of Ganga water.
वो इसलिए शुद्ध नहीं होता क्योंकि उसने गंगा जल लिया है.
Some of the most polluted water in India.
भारत में अभी सबसे यानी गंगा का पानी जो है वो मैला है.
That's not what makes you pure.
वह आपको शुद्ध नहीं बनाता.
What makes you pure is your moral qualities.
जो कुछ भी आपको शुद्ध बनाता है वो आपके नैतिक मूल्य बनाते हैं.
A Brahmin is somebody whose mind is controlled.
वह ब्राह्मण होता है जिसका मन नियंत्रित है.
Somebody who's the phrase is gone to the end of wisdom.
यानी ऐसी अभिव्यक्ति उसकी होती है कि जो प्रज्ञा के अंत तक गया है.
In other words, who's explored wisdom to its fullest extent.
उसने प्रज्ञा को पूरी तरह उजागर किया है.
Who's completed the Dhamma life.
जिसने धम्म जीवन पूर्ण किया है.
And somebody who has those qualities rightly can be called a Brahmin.
और जिसके पास ऐसे गुण है उसे सही मायने में ब्राह्मण कहा जा सकता है.
And they can speak the Dhamma.
और वे लोग धम्म कह सकते हैं.
And he doesn't know anything of pride at all.
अपने गर्व से वो कुछ नहीं कहता.
So this is the challenge that the Buddha offered at the foot of the Ajapala Nigrodha tree.
तो यह जो आह्वान है बुद्ध ने सादर किया अजपाल निग्रोध वृक्ष के तले.
It's very significant indeed.
यह काफी महत्वपूर्ण है.
To me it seems that this is the start of the Dhamma revolution.
मैं ऐसे समझता हूँ कि यह धम्म क्रांति की शुरुआत है.
It's my great wish that one day there's a statue of Baba Saheb near there.
मेरी ऐसी यानी मनीषा है कि एक दिन वहाँ बाबा साहब का पुतला होना चाहिए.
Because he, Baba Saheb, took up that challenge of the Buddha and reissued it.
क्योंकि बाबा साहब ने उस आह्वान को अपने हाथ में लिया और उसे पुनर्जीवित किया.
That shows that right from the start, the enlightened mind does not compromise with the world.
यह शुरुआत से ही स्पष्ट है कि जो संबोधि प्राप्त मन है वह किसी भी चीज के साथ समझौता नहीं करता.
Why should he compromise?
क्यों वे समझौता करें?
He doesn't want anything from the world.
क्योंकि दुनिया से उन्हें कुछ चाहिए नहीं होता है.
There's nothing the world can give him.
क्योंकि संसार या ये जो विश्व है उन्हें कोई भी चीज प्रदान नहीं कर सकता.
He's seen through it completely.
क्योंकि उसके उसे भेद कर उन्होंने देखा होता है.
So he's able just to speak the truth.
तो वे इस बात के पात्र होते हैं, योग्य होते हैं कि वे सत्य कहें.
He gets rid of that false hierarchy.
वह जो झूठी उच्च निष्ठा है उससे वे मुक्त होते हैं.
That false hierarchy which is based on clinging to self.
ऐसी झूठी उच्च निष्ठा जो स्व आसक्ति के बुनियाद पर निर्भर है.
And he replaces it with a hierarchy that's based on Dhamma.
और उन वह जो असमानता है उस असमानता को बुद्ध धम्म से परिवर्तित करते हैं.
The Buddha didn't mean to start a revolution.
बुद्ध का कोई ऐसा मकसद नहीं था कि मैं यहाँ कोई क्रांति करने जाऊंगा.
He just said what he saw.
उन्होंने केवल वही कहा जो उन्होंने देखा.
But for the first time this perspective came into the world.
लेकिन पहली बार यह दृष्टिकोण दुनिया में आया.
That perspective that can liberate people throughout the world.
ऐसा दृष्टिकोण जो संसार के सभी लोगों को मुक्ति प्रदान कर सकता है.
The real launching of the Dhamma revolution.
धम्म क्रांति की सही बुनियाद.
So we've got some sense from that of where the Buddha's gone.
तो इससे हमें कुछ भाव मिलता है कि बुद्ध कहाँ गए होंगे.
He's got no place in social hierarchy.
सामाजिक असमानता में या उच्च निष्ठा में वो अपना स्थान कहीं नहीं रखते.
He's got no interest in a place in social hierarchy.
उस सामाजिक उच्च निष्ठा पर अपना स्थान कहीं हो इसमें बुद्ध की रुचि नहीं होती.
His mind is completely untouched by the world.
उनका जो मन है यह दुनिया से बिल्कुल क्या कह सकते कि मुक्त होता है.
So for that reason, if no other, I always touch my head to that pillar when I go down there.
तो इसलिए हमेशा जब मैं उस विहार में जाता हूँ तो मैं सर वहाँ मेरे सर का स्पर्श करता हूँ, मेरा सर वहाँ झुकाता हूँ.
Because this very important rejection of injustice took place right there.
क्योंकि जितना भी अन्याय वहाँ हुआ है उन सभी अन्यायों को नकारा वहाँ बुद्ध ने.
If you like, the Buddha asserted liberty, equality, fraternity there.
ऐसा आप कह सकते हैं कि बुद्ध ने वहाँ समता, स्वतंत्रता और बंधुता को उजागर किया.
And he asserted it simply out of his own experience.
और उन्होंने इस बात से उजागर किया अपने अनुभवों के द्वारा.
Because there was nothing that the social hierarchy held for him.
क्योंकि उनके लिए कोई भी सामाजिक उच्च निचता धर कर रखती नहीं है, पकड़ कर रखती नहीं है.
He was completely free.
वे पूरी तरह मुक्त थे.
You know, we spend so much time concerned about what other people think of us.
हम अक्सर बहुत सारा समय इसमें जाया करते हैं कि और लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे.
We're very strongly determined by how other people see us.
हम इस बात से काफी प्रतिबद्ध होते हैं कि कैसे अन्य लोग मुझे देख रहे हैं.
We're very worried that they like us, that they think we're good and so on.
हम हमेशा ही चिंतित होते हैं क्या वो मुझे पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं.
But the Buddha was completely free.
लेकिन बुद्ध उससे मुक्त थे.
Not dependent on other people's approval.
और लोगों की मान्यता के ऊपर बुद्ध निर्भर नहीं थे.
In Bhante's terms, he was a true individual.
भंते के शब्दों में अगर कहा जाए तो वे सच्चे व्यक्ति थे.
He didn't need the group.
उन्हें समूह की आवश्यकता नहीं थी.
But if that was the end of it, well, it would be wonderful.
अगर यही अंत है तो यह सुंदर होगा.
But something came forward from that.
लेकिन उससे कुछ चीजें और आगे आई.
The Buddha's had now, first of all, a sense of himself as a supreme human being.
Buddha has a sense of being.
He's had that sense of himself as a supreme being.
तो बुद्ध को ऐसा एक भाव था कि वे एक उच्च मानव है.
He's completely rejected all social pressure.
जो सामाजिक दबाव थे उन सभी सामाजिक दबाव को उन्होंने नकारा था.
He's asserted the value of the Dhamma against the value of Atman.
तो उन्होंने धम्म का मूल्य उजागर किया था आत्मा के विरोध में या आत्मा के परिपेक्ष में.
If you like, in what we talked about yesterday, he was rejecting Atman as the center of self, center of his being.
क्या हमने कल देखा कि उन्होंने आत्मा यह उनका केंद्र है इस बात को उन्होंने नकारा नष्ट किया.
Then he asserted the Dhamma as the center of his being.
और उन्होंने उनके उनका जो अस्तित्व है या उनका जो अस्तित्व का केंद्र स्थान है वह धम्म है इस बात को उजागर किया.
Then he rejects Atman in all its forms of hierarchy as the basis for the social order.
और उन्होंने आत्मा को इस बात से नकारा कि सभी सामाजिक असमानता के ऊपर.
And he asserts Dhamma as the center of the social order.
और सामाजिक सुव्यवस्था के लिए उन्होंने धम्म को उजागर किया.
But it's as if that's brought people to his mind.
तो इस तरीके से लोग उनके मन में आए.
Up until that point, everything's just been going on within him.
इस बिंदु तक जो कुछ भी हो रहा था वह उनके आंतरिक विश्व में उनके अंदर की दुनिया में हो रहा था.
But he comes into relationship with other beings.
लेकिन वो औरों के संबंध में पहली बार यहाँ आए यानी अन्य लोगों के संबंध में.
And of course his first relationship is with Huhonkajati.
और उनका जो पहला संबंध जो आया या पहला पाला जो उनका पड़ा वो भूंक जाति से पड़ा.
Not a very impressive kind of human being.
वो बहुत प्रभावी व्यक्ति था ऐसा नहीं है.
And it's as if you could say that the Buddha thinks, oh dear, this is what human beings are like.
तो बुद्ध ने ऐसे सोचा कि ऐसे लोग होते हैं.
ऐसे लोग होते हैं. Yeah, this is what they're like, human beings.
ऐसे ही लोग होते हैं.
They're just obsessed with themselves.
वो पूरी तरह यानी अपने आप से भरे होते.
He thinks, well, what I've seen could set them free.
और उन्होंने फिर ऐसे सोचा कि जो मैंने देखा है शायद इनको यह मुक्तता दिला सकता.
And within him there arises an impulse to help.
और उनमें एक ऐसा प्रबल भाव निर्माण हुआ कि मैं इनकी मदद करूं.
You know, when we hear of Huhonkajati, we feel a bit indignant. Maybe we even laugh at him.
जब हम Huhonkajati के बारे में सुनते हैं, तो हम उसके ऊपर हंसते.
But that's not the way the Buddha sees it.
लेकिन बुद्ध ने उसे वैसा नहीं देखा.
It's as if the Buddha says, "What a pity."
बुद्ध ने यानी एक करुणा के भाव से वहां देखा कि कितना यानी उनको उनकी जरूरत है.
Compassion comes in him, yeah.
करुणा उनके मन में जागी.
Poor Huhonkajati.
बेचारा Huhonkajati.
Just caught up with my position.
पूरी तरह वह अपने जो पद और प्रतिष्ठा को पकड़े हुए था जकड़े हुए था.
And if you got a position, you can always fall off that position.
और जब कभी भी आप किसी पद को पकड़ते हैं तो उस पद से आप गिर सकते हैं.
The higher the throne, the longer the fall.
जितना ऊंचा आपका सिंहासन होगा उतने तेजी से आप नीचे गिरेंगे.
Poor Huhonkajati is challenged even by just somebody sitting under a tree.
बेचारा Huhonkajati केवल किसी के बैठने से उसको इतनी यानी चेतावनी मिली.
So, well, the Buddha feels compassion.
तो बुद्ध को करुणा महसूस होती है.
What I've seen would free him from that pain.
जो कुछ भी मैंने देखा है शायद यह बात उसे मुक्त करेगी.
There he is trapped in his house of pain.
तो वो अपने ऐसे दुख के गृह में पूरी तरह बंदिस्त है.
I know the house builder.
मैं उस गृहकार को जानता हूँ.
If he could see the house builder, he could be free.
अगर वह गृहकार को देखता है तो फिर वो मुक्त हो सकता है.
He doesn't have to go around saying, hum, 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 hum.
वो हमेशा ही इधर उधर जाकर ऐसा हूँ नहीं करेगा.
That's very painful to go around like that.
ऐसा कहना हमारी काफी पीड़ादायक होता है.
If only he could see the house builder, he'd be free.
अगर वो इस तरीके से गृहकार को देखते हैं तो वे मुक्त हो सकते हैं.
So compassion wells up in the Buddha's mind.
तो करुणा इस प्रकार से बुद्ध के मन में जागती है.
When wisdom meets beings, compassion arises.
जब कभी भी प्रज्ञा सजीवों को मिलती है तो करुणा जागती है.
If only he could understand, he'd be free.
केवल इसे अगर वो समझ जाए तो वो मुक्त हो सकता है.
So the impulse to communicate enters into the Buddha's mind.
तो यह जो मदद की जो प्रबल भाव या जो प्रवृत्ति है यह बुद्ध के मन में आई.
This is very important, isn't it? Because it tells us a lot about the enlightened mind.
तो यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह काफी चीजें व्यतीत या बताता है संबोधि मन के बारे में.
The enlightened mind is sensitive to other beings.
जो संबोधि प्राप्त मन है वह औरों के प्रति संवेदनशील होता है.
It's not cut off from other beings.
अन्य सजीवों से वह दूर नहीं जाता या उनसे बंद नहीं होता.
When other beings come before the enlightened mind, responds with compassion.
जो कोई भी संबोधि मन के संपर्क में आता है उसका प्रतिसाद केवल करुणा ही होता है.
But to begin with, the Buddha thinks, what can I do? What can I say?
तो तब बुद्ध के मन में ऐसा विचार आया कि अब मैं क्या कहूँ और मैं क्या कर सकता हूँ.
Well, you can just take Huhunka Jati as an example.
अब आप Huhunka Jati का उदाहरण ले सकते हैं.
If I say to Huhunka Jati, look, you don't have to build this house of pain.
मैं शायद उस Huhunka Jati को कह सकता हूँ कि देख यह तू दुख का गृह मत बना.
If you can just see it's your own craving that's creating your own pain, you'd be free.
अगर केवल तू इतना देख पाता है कि तेरी अपनी तृष्णा तुझे पीड़ा में डाल रही है तो उससे मुक्त हो सकता है.
Well, what would Huhunka Jati have said?
अब क्या Huhunka Jati ने कहा होगा या कहता?
We all know.
हम सब जानते हैं.
That would have been his response.
तो यही उसका जवाब होता.
So the Buddha feels, how can I communicate?
तो बुद्ध को यानी यह प्रश्न आया कि कैसे मैं इसे संवादित करूं.
So at this stage, the Buddha doesn't see how he can communicate what he's seen.
तो इस क्षण तक बुद्ध ने देखा नहीं कि कैसे वो अपने बात को संवादित करे कहे.
And he thinks, well, I'll say something to him, he'll say something back, I'll try and say something else.
तो अगर मैं कुछ कहूंगा तो वो कुछ प्रत्युत्तर देगा, फिर मैं उत्तर दूंगा, वो प्रत्युत्तर देगा.
And then in the end you'll just say hum hum and go away.
और अंततः वो बस हूं हूं कहके निकल जाएगा.
There's no point.
तो उसमें कोई पॉइंट नहीं.
I can't get it across.
तो मैं इसे भेद नहीं पा रहा हूँ.
So this is a terrible moment, you could say, in human history.
तो ऐसा हम कह सकते हैं कि वह बहुत ही भयानक ऐसा क्षण था मानवीय इतिहास का.
Sitting there under the tree, the Buddha is thinking, I can't communicate.
बोधि वृक्ष के तले वे बैठे हैं और सोच रहे कि मैं संवादित नहीं कर पा रहा हूँ.
I'll just give myself trouble to no good.
मैं अपने आप को तकलीफ ही दूंगा लेकिन उसकी कुछ भी अच्छाई नहीं होगी.
And you can imagine that with great sadness he thinks, okay, I'll just stay here, meditate.
तो वो ऐसा सोच सकते थे यानी थोड़ा अपने मन में खंत रखकर कि मैं यहाँ बैठूंगा और ध्यान करूंगा.
Now you all know the story from here on.
अब यहाँ की आगे की जो कहानी है वो आप सब लोगों को पता है.
You know that in the story the great Brahma Sahampati, the lord of 1,000 worlds, sees what's happening.
तो जो ब्रह्म संपत्ति है जब वो वहाँ आए तो
Thousand worlds, Sahampati.
वहाँ आए और फिर क्या हुआ?
So he's a very big god indeed.
तो वो बहुत बड़े ईश्वर थे या देव थे.
And well, he sees that the Buddha is about to remain silent.
और उन्होंने देखा कि बुद्ध केवल वहाँ शांत ही बैठे.
And well, he's very, very deeply concerned.
और उनको काफी यानी चिंता महसूस हुई.
How you understand this? It's up to you.
अब आप इसे कैसे समझते हैं यह मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ.
Of course, the only thing that is really important is if you do think there is such a thing as Brahma Sahampati, just remember he too is impermanent.
तो अगर आप ऐसा सोचते हैं ब्रह्म संपत्ति नाम की कोई चीज भी है तो ये भी सोचिए वह भी अनित्य है.
But maybe it's something in the Buddha's mind.
या हो सकता है बुद्ध के मन में ऐसा कोई विचार आया हो.
We can think of it like that.
ऐसा भी हम सोच सकते हैं.
Maybe almost like a figure in a dream that brings a solution to your problem.
कभी कभी हमारे समस्याओं का जो समाधान है अपने स्वप्न में कोई प्रतिमा आती है उससे भी आता है.
Have you sometimes experienced that? You go, your big problem in your life?
आपके कठिन समस्या से आपके जीवन में आप जाते हैं और आप सोचते हैं.
And then you dream at night.
और फिर आप रात को ख्वाब देखते हैं.
And there is the solution.
और वहाँ पे आपको उसका सुझाव या हल मिलता है.
So maybe it's something like that. That's one way we could understand it.
हो सकता है ऐसा कुछ हो और हम ऐसा समझ सकते हैं.
I don't know how the enlightened mind works, as it were, inside itself.
तो अपने भीतर मन या संबोधि प्राप्त मन कैसे काम करता है यह मुझे पता नहीं.
But in some way the Buddha suddenly thought, well, beings are in different stages of development.
तो बुद्ध ने देखा कि जो लोग हैं वह अपने प्रगति के अलग अलग स्तर पर है.
Yes, some people are completely blind.
कुछ लोग पूरी तरह अंधे हैं.
Maybe some are like Huhunka Jati.
कुछ लोग शायद Huhunka Jati जैसे हैं.
Very arrogant and therefore can't listen.
वो बहुत ही उद्धट होते हैं इसलिए वो सुन नहीं पाते.
But other people are not like that.
लेकिन अन्य लोग वैसे नहीं हैं.
Some people are a little bit open.
कुछ लोग थोड़े खुले हैं.
Some people are very open.
कुछ लोग बहुत खुले हैं.
So he thought, well, not everybody can hear.
तो उन्होंने सोचा कि हर व्यक्ति तो नहीं सुनेगा.
But some can.
लेकिन कुछ लोग सुन सकते हैं.
So he saw the whole world like a pool of great lotuses.
तो उन्होंने पूरी दुनिया को ऐसे देखा कि कोई कमल कुंज है.
And that some of the lotuses are deep in the mud.
तो कुछ कमल कुंज जो कीचड़ है उसमें धसे हुए हैं.
Completely closed.
पूरी तरह बंद है.
Maybe Huhunka Jati was down there in the mud.
शायद उस कीचड़ में Huhunka Jati रहा होगा.
Some are growing up through the water.
कुछ कमल जो है वह पानी से ऊपर खिल रहे थे.
Some stand above the water.
कुछ पानी के ऊपर थे.
And some are a little bit open.
और कुछ थोड़े खुले हुए थे.
So the Buddha had a vision of development, of growth.
तो इस प्रकार के प्रगति की जो दृष्टि है, इस प्रगति की दृष्टि को बुद्ध ने देखा.
This is extremely important for us, of course.
यह हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है समझना.
Because it shows that we're capable of growth.
यह दर्शाता है कि हम प्रगति के लायक है.
However deep in the mud we are, we can grow above the water.
कितने भी हम कीचड़ में फंसे हुए क्यों ना हो, हम उससे ऊपर पानी में आ सकते हैं.
So this vision is central to the Buddha Dhamma.
तो यह जो दृष्टि है यह बौद्ध धर्म में केंद्रीय है.
And it's very interesting that it's given in terms of an image.
और यह भी महत्वपूर्ण है कि एक प्रतिमा के रूप में इसे बताया गया है.
The enlightened mind sees the truth through all kinds of experiences.
तो संबोधि प्राप्त जो मन है या संबोधि का जो मन है वह सभी अनुभवों में ऐसी चीजें देखता है.
If you like, it's the mind of the poet.
Poet.
Of the poet, yeah.
ऐसा आप कह सकते हैं यह एक कवि मन है, कवि का मन है.
The poet sees the rising sun as a symbol for something.
कवि जो है उगते हुए सूरज को किसी चीज का प्रतीक मानता है.
He sees the moon as a symbol.
वो चांद को किसी चीज का प्रतीक मानता है.
The poetic mind transforms everything into a symbol.
जो कवि मन है वह जो चिन्ह होते हैं उनको हमेशा ही परिवर्तित करते हैं.
So the Buddha had this poetic vision of a lotus pool.
तो ऐसा बुद्ध के मन में कमल कुंज का प्रतीक मन में आया.
And it made him realize that it was possible for him to communicate his understanding.
और उन्होंने यह सोचा कि यह मुमकिन है कि जो प्रगति की दृष्टि है यह संवादित हो सकती है.
And therefore to set out on his mission.
इसलिए उन्होंने फिर अपने मिशन की शुरुआत की.
And well, brothers and sisters, we have a great deal to be grateful for that moment.
तो भाई और बहनों, इस क्षण के लिए हमने काफी कृतज्ञ होना चाहिए.
If the Buddha had not had that vision, well, we wouldn't be here.
अगर बुद्ध को वह दृष्टि उस क्षण नहीं आती तो हम लोग यहाँ नहीं होते.
Of course, the enlightened mind has to have that vision.
निश्चित ही यह स्वाभाविक है कि संबोधि मन को यह दृष्टि होती है.
The Buddha has to see that.
बुद्ध को इसे देखना ही है.
It's sooner or later that will occur to the Buddha.
आज नहीं तो कल या कभी ना कभी बुद्ध को यह जरूर पता चलेगा.
Looking from the unconditioned perspective, he will see the truth about human beings.
असंस्कारित बुनियाद से वह चीजों की सत्यता को निश्चित ही देखेंगे.
And he tells Brahma Sahampati that he is going to teach.
और फिर वो ब्रह्म संपत्ति को कहते कि मैं अभी पढ़ाने जा रहा हूँ.
And he utters these wonderful words.
और इन सुंदर शब्दों को कहते, क्या आप सुन सकते हैं पीछे?
Open to them are the doors to the deathless.
जो मृत्यु रही द्वार है वह मेरे लिए खुले हो गए हैं.
Well, that's very interesting. The deathless, doors to the deathless.
यह बहुत ही रोचक बात है कि जो द्वार है वह मृत्यु रहित है, मृत्युहीन है.
The Buddha has gone to the deathless state.
बुद्ध जो है वह मृत्यु रहित अवस्था में, मृत्युहीन अवस्था में पहुंच गए हैं.
Of course, if it's deathless, it must also be birthless.
अब अगर यह मृत्युहीन है तो यह जन्महीन भी है.
His mind, his consciousness is not dependent on birth and death.
तो उनका जो मन है, उनकी जो चेतना है, यह जन्म और मृत्यु के ऊपर आधारित नहीं है.
That's what we're trying to experience in the sixth stage of the six element practice.
तो हम छह धातुओं का ध्यान करते उसके छठे चरण में हम इसका अनुभव लेने की कोशिश करते
हैं. We're trying to experience consciousness free from the other five dhatus.
तो हम अपने चेतना को जो अन्य पांच धातु है उससे मुक्त हो इसका अनुभव लेने की कोशिश करते हैं.
We realize that those five dhatus cannot be self.
हम इस बात का साक्षात्कार कर चुके होते या करने की कोशिश करते हैं कि यह जो पांच धातु है यह स्व नहीं है.
So we let go of them.
तो हम उन्हें त्याग देते हैं.
We just experience consciousness.
हम केवल चेतना का अनुभव करते हैं.
And that consciousness can neither be born nor can it die.
तो यह जो चेतना है यह जन्म नहीं ले सकती और इसकी मृत्यु भी नहीं हो सकती.
Good. So, the state that is beyond death is also beyond birth.
तो जो अवस्था मृत्यु के परे है, वह जन्म के भी परे है.
So the Buddha has opened the door to the deathless, to the birthless.
तो बुद्ध ने मृत्युहीन द्वार खोले, जन्महीन द्वार के लिए या जन्महीन अवस्था के लिए.
A consciousness that is not dependent on any conditions.
चेतना जो किसी भी संस्कार के ऊपर निर्भर नहीं है, आधारित नहीं है.
It's difficult to talk about these things shouting, but I have to.
अब इन चीजों को चिल्लाकर कहना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन अब हमें वह करना पड़ रहा है.
These are things that should be talked about in a whisper.
ऐसी बातें हैं जो हितगुज को क्या कहते हैं, कानाफूसी नहीं, धीरे से आपके कान में कही जाने वाली बात है.
You don't have a word for whispering in Hindi.
Well, in Marathi, we are Hindi. Actually.
I'm teasing you. So we should speak about these things in very soft tones.
तो इन शब्दों को मैं बहुत ही मृदु शब्दों में कहना चाहता हूँ.
With our shoes off.
और हमारे पैरों में जूते ना हो.
These are sacred things we're talking about.
ये बहुत ही पवित्र चीजें हैं जो मैं अभी कह रहा हूँ.
Very easily misunderstood.
बहुत आसानी से इसकी गलत फहमी हो सकती है.
But these are the words the Buddha used.
लेकिन यही शब्द बुद्ध ने इस्तेमाल किए.
Open are the doors to the deathless.
मृत्युहीन के द्वार खुले हो गए.
That's what the Buddha did at that place.
यही बुद्ध ने किया उस वज्रासन में, उस जगह में.
He opened the doors to the deathless.
उन्होंने मृत्युहीन ताके द्वार खोले.
And then he said, let those who have faith open their ears.
और उन्होंने कहा कि
those who have faith open their ears.
जिनके पास श्रद्धा है उनके अभी कान खुले हों.
If you've got faith in your heart, then open your ears and listen.
अगर आपके मन में श्रद्धा है तो आपके कान खोलिए और सुनिए.
Because this Dhamma cannot be spoken to those who do not have faith.
तो धम्म उनके साथ संवादित नहीं किया जा सकता या बात नहीं की जा सकती जिनके हृदय में श्रद्धा नहीं है.
The Buddha says that this dhamma I have discovered is deep.
यह धम्म जो मैंने खोजा है यह काफी गहरा है.
It's hard to see.
यह इसे देखना मुश्किल है.
Hard to understand.
इसे समझना कठिन है.
Peaceful, sublime.
यह शांतिपूर्ण है.
And sublime.
अनुत्तर है.
Not within the sphere of reason.
यह कारणों के परिपेक्ष में नहीं है.
Yeah, I've got your attention because I can't speak if your ears are not open. Not within the sphere of reason.
यह कारणों के दायरे में नहीं है.
Within not the sphere of reason. Yeah. Oh, okay. A tarkavacharo.
यह तर्क के दायरे में नहीं है. यह अतर्क वचरो है.
Reason cannot reach this sphere.
कारण जो है, तर्क जो है, यह इस हद तक नहीं पहुंच सकते.
You cannot think your way to the deathless.
आप सोच नहीं सकते. आप मृत्युहीन हैं. यानी आपके सोच कर मृत्युहीनता नहीं आती.
A PhD won't help you get there.
आपके PhD वहां जाने के लिए मदद नहीं करती.
It's subtle.
यह सूक्ष्म है.
To be experienced by the wise.
जो यानि प्रज्ञावान है उनसे यह अनुभवित होता है.
It's to be experienced by those with faith.
यह उनके द्वारा अनुभवित होता है जिनमें श्रद्धा है.
Some whose ears are open.
जिनके कान खुले हैं.
Whose eyes have but little dust on them.
जिनके आंखों पर धूल नहीं है.
So the Buddha says, I wasn't going to speak because I thought I wouldn't be able to communicate.
बुद्ध ने सोचा कि मैं कहने नहीं जा रहा था. मुझे ऐसे लगा कि शायद मैं यह संवादित ना कर पाऊं.
Because this dhamma that I've seen is beyond the reach of reason.
तो जो धम्म मैंने देखा वह तर्कों से परे है.
It can only be approached with shraddha.
इसको केवल श्रद्धा के द्वारा ही देखा जा सकता है.
Extremely important for us.
यह काफी महत्वपूर्ण है हमारे लिए.
When we go to the Bodhi tree, if we want to approach the Buddha, we have to do so with faith.
तो अगर हमें बोधि वृक्ष में जाना है और बोधि वृक्ष के ऊपर रुख करना है तो हमें श्रद्धा पूर्ण होना आवश्यक है.
If we don't approach with faith, we will not see the Buddha.
अगर हम श्रद्धा से उन्हें रुख नहीं करेंगे या देखेंगे नहीं तो हम बुद्ध को नहीं देख पाएंगे.
But if we do approach with faith, we will experience something of the Dhamma.
और अगर हमने हमें अगर श्रद्धा है तो फिर हम धम्म के तरफ रुख कर सकते हैं.
So that's what happened at that point.
तो यह हुआ उस क्षण में.
So again, another reason for touching your head to that pillar.
तो यह दूसरा कारण है क्यों आपने सजदा करना चाहिए उस स्तंभ के लिए. अपना सर झुकाना चाहिए उस स्तंभ के आगे.
That's where the Buddha launched the Dhamma revolution.
वहां पे बुद्ध ने धम्म क्रांति का बीज बोया.
By challenging the established social order.
जो भी प्रस्तावित सामाजिक व्यवस्था थी उसे आह्वान करके.
And that is where the Buddha opened the doors to the deathless.
अब वहां पे बुद्ध ने जो मृत्युहीनता के द्वार है उन्हें खोले.
The doors that we are committed as Dhammacharis and Dhammacharinis to walking through.
वह द्वार एक धम्मचारी या धम्मचारिणी होने के नाते हमने कटिबद्ध अपने आप को किया है.
We are approaching those doors.
हम उस दरवाजे के पास जा रहे हैं.
That's what our commitment is as Dhammacharis and Dhammacharinis.
एक धम्मचारी और धम्मचारिणी होने के नाते हमारी यह कटिबद्धता है.
But we could not have been Dhammacharis and Dhammacharinis if the Buddha had not opened the doors to the deathless.
अगर बुद्ध मृत्युहीनता के द्वार अगर नहीं खोलते तो हम धम्मचारी और धम्मचारिणी नहीं होते.
So while you're walking round the Bodhi tree, reflect on this.
तो जब आप बोधि वृक्ष की परिक्रमा करते हैं तो इसका चिंतन कीजिए.
Reflect on the Buddha's compassion.
बुद्ध की करुणा के ऊपर करुणा के प्रति आप चिंतन कीजिए.
The Buddha's compassion which cannot see oppression.
बुद्ध की करुणा जो उत्पीड़न कतई देख नहीं सकती,
which will not accept injustice.
किसी भी अन्याय को वह स्वीकारती नहीं है.
And the Buddha's compassion that seeks to enable others to gain the freedom he had gained.
और बुद्ध की संबोधि वह है जो औरों को योग्य बनाती है उनके अपने विमुक्ति के लिए.
So we get a little bit closer to what the Buddha is like.
तो हम अब थोड़ा धीरे धीरे उनके करीब आ रहे हैं कि बुद्ध कैसे थे.
Even though the Buddha has disappeared,
भले बुद्ध अदृश्य हो गए,
even though we've seen him disappearing by destroying the house builder,
भले उन्होंने वे अदृश्य हो गए गृहकार का जो गृह है उसे ध्वस्त करके,
we can see something of what he is.
हम कुछ तो भी झलक उनकी देख पाते हैं वे कैसे थे.
He's compassionate.
वे करुणावान थे.
But it's not our ordinary compassion.
लेकिन यह सामान्य करुणा नहीं थी.
Our ordinary compassion is based on self.
हमारी जो करुणा होती है यह स्व के ऊपर आधारित होती है.
I have compassion for you because I put myself in your place.
मैं आपके लिए करुणा रखता हूँ क्योंकि मैं आपकी जगह अपने आप को रखकर देखता हूँ.
I think that if I'm in your place, I would suffer.
अगर मैं आपकी जगह होता तो मुझे पीड़ा होती.
So I feel for you.
तो मैं आपके लिए महसूस करता हूँ, आपके लिए सहानुभूति जताता हूँ.
That's really good, of course.
अब यह अच्छी बात है, निश्चित ही.
But the Buddha's compassion is beyond that.
लेकिन बुद्ध की करुणा इससे परे है.
Because he sees not just the suffering, he sees the lack of wisdom.
वे केवल दुख को ही या पीड़ाओं को ही नहीं देखते हैं, वह देखते हैं कि
lack of wisdom, yeah.
वो प्रज्ञाहीनता जो है उसे भी देख पाते हैं जहाँ प्रज्ञा नहीं है.
He sees that people do not see what is so obvious to him.
वे ऐसा सोचते हैं कि लोग बिल्कुल नहीं देख पाते जो उनके लिए काफी स्वाभाविक है, सहज है देखना.
And he has to communicate.
और वे उन्हें संवादित यह बात को उन्हें संवादित करना ही है.
If he can help, he'll help.
अगर वे मदद कर पाते हैं तो वे मदद करेंगे.
If he can communicate the truth, he'll communicate it.
अगर वे सत्य को संवादित कर पाते हैं तो वे सत्य को संवादित करेंगे.
That is the nature of the enlightened mind.
यह स्वभाव होता है संबोधि प्राप्त मन का.
The enlightened mind communicates.
संबोधि प्राप्ति मन संवादित करता है.
And in a way, I remember Bhante saying, until it's communicated, it's not fully realized.
Bhante ऐसा कहते हैं कि अगर संबोधि प्राप्त मन संवादित नहीं हुआ तो वह पूरी तरह साक्षात्कारित है या पूरी तरह साक्षात्कार हुआ है, ऐसा हम नहीं कह सकते.
Bhante said that for the Buddha, not to communicate is not to be the Buddha.
बुद्ध के लिए संवादित न करना बुद्ध न होने के बराबर है.
So the Buddha's compassionate communication is intrinsic to his nature.
तो करुणा का स्वभाव जो है वह बुद्ध के लिए सहज है.
And so when we're there, let's reflect on this.
तो इसके ऊपर हम चिंतन करेंगे.
Touch your head to the pillar.
आपका सर झुकाइए उस या आपका नतमस्तक होइए उस स्तंभ के प्रति.
As crores of Buddhists have done over 2000 years.
2000 साल तक करोड़ों बौद्धों ने अपना सर वहाँ झुकाया है.
And reflect that here the Dhamma revolution was launched.
और इस बात का चिंतन कीजिए कि वहाँ पे धम्म क्रांति का बीज बोया गया.
Here the doors of the deathless were opened.
यहाँ पे मृत्युहीनता के द्वार खुले हुए.
And here the Buddha's compassion revealed itself.
और यहीं पे बुद्ध की जो करुणा है या महाकरुणा जो है वह उजागर हुई.
And remember that what's asked of us is Shraddha.
और याद रखिए आपको क्या केवल पूछा गया है वह श्रद्धा है.
It's receptivity.
आपकी ग्रहणशीलता.
A receptivity that leaves behind self.
ऐसी ग्रहणशीलता जो स्व को छोड़ देती है.
And if we approach the Mahabodhi temple tonight with that spirit, will definitely experience something of the living Dhamma.
तो अगर इस तरीके से अगर हम महाबोधि विहार को देखते हैं तो ऐसा जीवित धम्म हमें निश्चित ही अनुभव में आएगा.
We'll feel it in the atmosphere.
उस वातावरण में परिसर में हम इसे महसूस करेंगे.
We'll feel it as a sort of flavor in the atmosphere.
उसकी जो खुशबू है, महक है, वो महक हमें आएगी.
We'll feel it as a sort of vibration in the atmosphere.
वो जो कंपन है, वो कंपन हमें महसूस होंगे उस वातावरण के.
We'll be able to flow with the faith of countless thousands, lakhs of Buddhists down the ages.
तो इतने जो यानी अनगिनत जो बौद्ध है उनके भाव से वह कंपनी हमें महसूस होंगे.
Opening our hearts, opening our eyes, opening our ears.
हमारे आँख कान और हमारे हृदय हमने खुले करने चाहिए.
Going to the feet of the Buddha.
इस तरीके से हम बुद्ध के चरणों में जाते हैं.
The feet of the Buddha, where we belong.
बुद्ध के चरणों में जहाँ हमारी अपनी जगह है.
Not in nirvana's stillness, not in samsara's flow, not in the heavens above us, not in the hells below, not in thought or word or action, not where mind and object meet. With wisdom and compassion, my place is at thy feet.
Na nirvan ki sthirta mein, ना संसार के प्रवाह में, ना ऊपर स्वर्ग में, ना ही नरक तल में, ना विचार शब्द एवं कृति में, ना मन और वस्तु स्पर्श में, पर प्रज्ञा और करुणा के साथ मेरी जगह आपके चरणों में.